Good evening and welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today we'll also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But do remember that we don't address company-specific queries. You can call us on our telephone numbers 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106. And of course, do not forget to prefix the code 011 before these numbers if you're calling from out of Delhi or from your mobile number. Well, my name is Nishit Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya.
Namaskar, Shubh Sandhya, Karubari Khabron ke saath Market Mantra hazir hai. Aaj somvar hai shrotaon aur har somvar ki tarah hum aapke prashnon ko karyakram mein shamil karenge. व्यापार जगत हो, अर्थव्यवस्था हो या फिर शेयर बाजार से जुड़ा कोई भी सवाल हो, वो आप निसंकोच पूछ सकते हैं. हमें कॉल कर सकते हैं आप इन नंबर्स पर. ये नंबर्स हैं 2331-4444, 2331-0481 और 2371-7106. दिल्ली से जो भी बाहर के श्रोता हैं और जो मोबाइल फोन से कॉल करने वाले श्रोता हैं, वो इससे पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी डायल करें. आज की खबरों पर चर्चा करने और आपके पूछे जाने वाले सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार शिशिर सिन्हा. शिशिर, मार्केट मंत्र में आपका अभिनंदन.
जी धन्यवाद, नमस्कार.
चर्चा शुरू करेंगे श्रोताओं, मगर उससे पहले आइए सुने सुर्खियां.
The benchmark domestic indices rebound. Sensex gains over 600 points. Nifty closes at nearly 24,100. India and New Zealand sign landmark free trade agreement. Prime Minister Narendra Modi says it will open new avenues for growth, create opportunities and deepen synergy across sectors. And global crude oil prices rise.
देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में बढ़त. सेंसेक्स 600 अंक से अधिक बढ़ा. निफ्टी 24,000 के ऊपर बंद हुआ. भारत और न्यूजीलैंड ने मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इससे विकास के नए रास्ते खुलेंगे, नवीनतम अवसर मिलेंगे और सभी क्षेत्रों में तालमेल बढ़ेगा. और वैश्विक कच्चे तेल के दाम बढ़े.
The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not that of Akashwani. Akashwani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
और कार्यक्रम के सबसे महत्वपूर्ण भाग की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर हम बताएंगे आपको कि आज पूरे दिन के दौरान हमारे प्रमुख शेयर सूचकांकों ने कैसा व्यवहार किया. श्रोताओं, देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में आज 0.8% से अधिक की बढ़त दर्ज की गई, जिससे तीन दिन की लगातार गिरावट का सिलसिला टूटा. सेंसेक्स 639 अंक बढ़कर 77,304 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 195 अंक की बढ़त के साथ 24,093 पर स्थिर हुआ. वहीं व्यापक बाजार सूचकांकों ने प्रमुख सूचकांकों से बेहतर प्रदर्शन किया. मिड कैप 100 में लगभग 1.5% की वृद्धि हुई, जबकि स्मॉल कैप 100 में लगभग 2% का उछाल आया. इससे पहले एशियाई बाजारों में तेजी के कारण भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत जो है वो सकारात्मक रही. कच्चे तेल के ऊंचे दाम और भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बावजूद सभी क्षेत्रों में व्यापक खरीदारी के कारण बाजार में पूरे सत्र के दौरान तेजी देखी गई.
द बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडिसेस गेन्ड ओवर 0.8% टुडे, स्नैपिंग अ 3-डे लूजिंग स्ट्रीक. द सेंसेक्स क्लाइम 639 पॉइंट्स टू क्लोज एट 77,304, while the Nifty rose 195 points to settle at 24,093. Meanwhile, the broader market indices on the National Stock Exchange outperformed the frontline indices. The mid-cap 100 rose nearly 1.5%, while the small-cap 100 jumped 1.9%. Earlier, the market opened on positive notes, mirroring gains across the Asian peers. The upbeat momentum persisted throughout the session, driven by broad-based buying across sectors despite elevated crude oil prices and ongoing geopolitical uncertainties.
सेंसेक्स में शामिल 30 में से 23 कंपनियों के शेयरों में बढ़त दर्ज की गई. शीर्ष प्रदर्शन करने वाली कंपनियों में सनफार्मा 7%, रिलायंस लगभग 3% और अदानी पोर्ट्स में 2.7% से अधिक की वृद्धि हुई. वहीं नुकसान उठाने वाले शेयरों में सबसे पहला नाम एक्सिस बैंक 3%, BEL 2% और ट्रेंट में लगभग 1% की गिरावट दर्ज की गई.
एंड ऑल 25 सेक्टोरल इंडिसीज एट द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्लोज्ड इन द पॉजिटिव टेरिटरी. इन द टॉप गेनर्स यूटिलिटीज क्लाइम 2.5%, हेल्थ केयर एज वेल एज फोकस्ड आईटी जंप्ड ओवर 2.4% एंड रियल्टी एडवांस्ड मोर देन 2.3%. द ओवरऑल मार्केट ब्रेथ एट द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वॉज पॉजिटिव विद शेयर्स ऑफ 3,075 कंपनीज एडवांस्ड, 1,288 डिक्लाइंड and 193 remained unchanged.
श्रोताओं आइए जान लेते हैं रुपए का हाल. अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज एक डॉलर की तुलना में 6 पैसे मजबूत होकर 94.19 रुपए के स्तर पर बंद हुआ. उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक अंतर दिवसीय कारोबार में 98.31 पर चल रहा था. शिशिर, पिछले 3 सत्रों से हमने गिरावट देखी और आज बाजार में फिर एक रौनक आई है. ये जो रौनक है ये किस दिशा को प्रभावित कर रही है?
अभी से रौनक कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगा
जी.
माफ कीजिएगा, मैं बहुत निराशावादी नहीं हूं लेकिन आशावादी नहीं होना चाहता हूं क्योंकि परिस्थितियां अनुकूल नहीं है. बीते 2 दिनों कुछ ऐसी घटनाएं हुई, जैसे सबसे पहले तो ओमान और ईरान के बीच संबंध जो है वो बेहतर हुए हैं और मध्यस्थता की जो अब बात चल रही है वो शायद अब ओमान शिफ्ट हो जाएगा. दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्री और रूस के बीच में बातचीत हुई है, उसके भी कुछ एक सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं. उन दोनों कारणों से एक उम्मीद बंधी है कि शायद अब जो मामला है, जो युद्ध विराम की स्थिति अभी तक बनी हुई है, उसमें शायद कुछ और प्रगति हमें देखने को मिली. लेकिन दूसरी ओर अगर हम देखें तो इसराइल और लेबनान के बीच अभी भी जो है वो संघर्ष जारी है और वहां पर भी काफी ज्यादा जो है वो मतलब लोगों की मृत्यु हुई है. तो इन तमाम परिस्थितियों के बीच में बाजार जब बहुत बुरी तरह से गिर चुका है तो एक खरीदारी का मौका बना और आज हमने देखा कि ये लगभग जो 0.8% की हमने बढ़ोतरी सेंसेक्स और निफ्टी में देखी है उसकी खास वजह यह है कि जहां जहां कहीं पर भी एक खरीदारी का मौका बना लोगों ने खरीद करी है. और दूसरी तरफ आप ये भी ध्यान में रखिए कि अभी कच्चे तेल के भाव जो है वो 106-107 डॉलर बैरल प्रति बैरल पे चल रहे हैं जो बाजार को कहीं ना कहीं एक आशंकित कर रहा है. इसीलिए बाजार में जो खरीदारी हो भी रही है वो सावधानी पूर्वक हो रही है और जिसका नतीजा है कि आप रौनक शब्द के ऊपर मैंने इसलिए शुरू में कहा क्योंकि 600 पॉइंट की जो 600 अंकों की बढ़ोतरी जो है वो बहुत ज्यादा मायने समय नहीं रखती है जब बाजार पूरी तरह से
जब इतनी अनिश्चितता है.
जी बिल्कुल.
Listeners, you're tuned into Market Mantra, the program, the business program on Akashwani. You can call us on our telephone numbers 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106 and do not forget to prefix 011, the code, before these numbers. Shishir ji, we were discussing earlier that how the markets are playing the seesaw game. But talking of sectors here, when we see the IT sector, especially over the past few sessions, this IT sector has been kind of given a bit of a disappointing kind of a trend or a trajectory, if we may say. Now, is it one of the causes because the AI thing, which was happening big, the AI Impact Summit also happened a couple of months back in India, which was held on a very grand scale. Now, can we say that the AI, which was earlier perceived to be the next big thing happening in the tech world, has not lived up to its expectation as of now? Does it have the spillover effect on the IT sector?
Certainly. See, this time we are seeing that technology is beating technology. And the scenario, earlier I was bullish on IT sector because I was expecting more and more expenditure by various countries like companies in Europe. They were expected to spend more on the IT sector. But now the focus is more on the AI thing. And also you must have noticed that globally, all over the globe, the IT companies are reducing the workforce.
Yes.
And that is also giving some kind of negative signal to that.
Right.
Does this mean they are going more for the AI thing or the AI companies which are giving signals that they have much more better system to take over what the IT companies were doing. Like, for example, I can tell you, if the 20 people on a, say, from IT companies doing a project, now if an AI company is coming and say, I need just one person to do that. So certainly the buyer will go for that company. That is what happening with the IT sector, and that is what we are seeing more and more selling pressure on the IT companies.
We'll come back to that. And before we proceed any further, we are joined in by our first caller, KK Shukla from Maharashtra. Mr. Shukla, welcome to the show.
Thank you. Mera question hai ki rupaya aur sone mein kya sambandh hai? Ek ka price badhta hai to dusre ka ghatta hai kya? Aisa kuch? और सेकंड पॉइंट अभी कुछ दिन पहले ईरान का जो मुद्रा है उसमें एक जीरो हटाने की बात थी उससे क्या मुद्रा में फायदा होता है उसके फीचर में जरा बताइए।
देखिए रहा सवाल जहां तक कि रुपया और सोने का, तो रुपये की बात हम लोग जब करते हैं तो रुपया और डॉलर की बात करते हैं। डॉलर जब जब मजबूत होता है सोना तब तक कमजोर होता है। दूसरे शब्दों में कहें कि रुपये में जब कभी भी हम गिरावट देखते हैं तो सोने में भी गिरावट आती है और उसकी वजह कि डॉलर मजबूत हो रहा है। जो हमने इस समय चलन देखा, आज भी अगर मैं गलत नहीं हूं तो सोने के भाव में गिरावट ही देखने को आज मिली है क्योंकि जो डॉलर के भाव हैं वो थोड़े बेहतर रहे हैं। दूसरा सवाल जो आपकी ईरान की मुद्रा को लेकर के, देखिए ईरान की मुद्रा कोई ऐसी मुद्रा नहीं है जो विश्वव्यापी स्तर पर कोई अपना प्रभाव छोड़ सके। तो ऐसे में उन मुद्रा में वो क्या बदलाव करते हैं, उस मुद्रा की शर्तों में क्या बदलाव करते हैं, उससे वैश्विक मौद्रिक व्यवस्था पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। हाँ, अब यहां पर महत्वपूर्ण क्या है कि जो ईरान कोई भी सामान बेच रहा है वो ये कह रहा है कि वो चीनी मुद्रा में उसकी कीमत वो लेगा। आप चाहे वो कच्चे तेल की बात करें, हम चूंकि सबसे ज्यादा वो कच्चे तेल बेचता है तो कच्चे तेल में जितनी भी वो बिक्री कर रहा है वो चीनी मुद्रा में कर रहा है और ये एक डॉलर के लिए जो है वो एक कहीं ना कहीं एक खतरे की घंटी बजा रहा है कि जो हम डी डॉलराइजेशन की जो हम लोग बात करते थे वो किस तरीके से इस तरह के घटनाक्रम से प्रभावित हो सकता है। तो ईरान के बजाय अगर आपके प्रश्न में मैं एक पंक्ति अपनी तरफ से जोड़ दूं कि चीन की मुद्रा जो है वो इस समय हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है।
शशर जी, इट सीम्स अ लॉट ऑफ यू नो द बैकवाटर चैनल्स एफर्ट्स आर हैपनिंग इन द वेस्ट एशियन क्राइसिस, एज यू जस्ट मेंशन अबाउट ईरान काइंड ऑफ डीलिंग इन द चाइनीज करेंसी सो फार एज द क्रूड इज कंसर्न, द ट्रेड इन क्रूड इज कंसर्न। नाउ व्हाट डज इट सिग्निफाई रियली? इज इट रियली अ डायरेक्शन? इज इट रियली एन एफर्ट टुवर्ड्स अ डी डॉलराइजेशन एज यू जस्ट मेंशन?
As of now, we are seeing at least 40% of global trade is happening in dollar. So that means 60% opportunities are there, and many of the countries are going for bilateral negotiation, like India has done with the 22 countries where we are going to trade in that what we call as the rupee and the local currency trade. That means whatsoever goods we are importing from there, we will pay in our rupee, and whatsoever they sell, they will take the money in their own currency. So in this kind of situation, if Chinese currency is becoming an important tool in this kind of crude oil trading, wherever is happening, and we should not forget that China has a strong crude reserve. Yeah. So in case any kind of disruptions is taking place, then China may go and sell its part of this strategic reserve. Mm-hmm. And that situation, of course, they will accept the payment only in the Chinese currency. Yeah. So this is a situation which we are finding in the global monetary system, where the Chinese currency, what we know as the yuan or renminbi, they are getting high traction.
Right.
आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं एशिया और यूरोप के बाजार की तरफ। आज प्रमुख एशियाई शेयर सूचकांकों में मिला जुला रुख देखने को मिला। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 2.1% से अधिक बढ़कर 6615 के नए स्तर पर बंद हुआ। जापान का निके भी लगभग 1.4% बढ़कर 60537 के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। चीन की शंघाई कॉम्पोजिट इंडेक्स लगभग 0.2% बढ़ा। वहीं दूसरी ओर अगर देखें तो सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.6% से अधिक लुढ़का और हांगकांग के हैंगसेंग सूचकांक में 0.2% की गिरावट दर्ज की गई। बात करें यूरोपीय सूचकांकों की तो यहां सकारात्मक रुझान देखने को मिला। जर्मनी का डैक्स लगभग 1%, फ्रांस का कैक 0.8% से अधिक और लंदन का फुटसी अंतिम समाचार तैयार किए जाने तक लगभग 0.3% की बढ़त के साथ कारोबार करता नजर आया।
शशिर जी, इवन द major markets, be it the Asian markets or the European markets, and of course, when you talk the Dow and all, giving complex mixed signals to the investors. Now, coming back to the Indian market, what piece of advice, if any, you have for the Indian investors for the current market? Because we have been getting like many queries that whether it's the correct time to invest, whether it's time to roll back or play safe, invest in gold and other safe havens and all. A broader picture we would like to have from you.
It all depends upon the allocation. I have always advocated for what we call as the SIP kind of system in investment as well as in profit booking. Mm. So if you have, say, 100 rupees, take a part of that in the stock market when the market is very low and the value stocks are available at a very cheaper price. So whenever there is a dip in the market, it is giving you an opportunity to go for the value stock. Now you may ask that at what level they will go. Is this the bottom? That is something which is very difficult to tell you. And that is why I'm advocating for what we call as the systematic investment buying. So rather than SIP, you go for SIB in case of the equity market and go for a small buy in some of the value stock. So if you have 100 rupees, I would say that keep it in 40 or 45 rupees or 50 rupees in the equity market and remaining 50 rupees in, say, post office schemes or in bank, because that will provide you hedging.
Yeah.
At this moment, it is very important to protect the principal.
The sovereign security.
Yes. I mean, especially I'm talking about the post office where you have the sovereign security. In the banking system, you have the, of course, the banks will give you the principal, and in case of any closure of the bank, then there will be the insurance factor will come into, and there you will get the 5 lakh rupees per account. So my advice would be that put that remaining 50 in the post office schemes. There are 12 schemes in the post office. You have the current saving account where you are getting 4%, only saving account. In the system, which is giving you 4% interest rate. All the banks are giving you 2.6, 2.7, 2.75%. So my advice would be that put that 50 rupees in the bank as well as in the post office, majority of that in the post office, and just 50 rupees going for the SIB.
शशर एक बहुत ही जिज्ञासापूर्ण सवाल हमारे पास कई बार कॉल इन प्रोग्राम में निश्चित हमने या साथ में प्रोग्राम किया तो हमने देखा है सुना है आता है वो सवाल ये है कि आज की तारीख में जब इतनी अनिश्चितता पूरे बाजार पर हावी है उस बीच क्योंकि आपने एलोकेशन की बात की मनी एलोकेशन की बात की कि कहां किस तरीके से हमें इन्वेस्ट करना चाहिए तो उस लिहाज से मैं एक श्रोता और एक निवेशक की तरफ से आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आज ये सवाल आया है सवाल ये है कि आज हम गोल्ड में इन्वेस्ट करें हम आपने जो एसआईबी की बात की है उसमें करें या हम वन टाइम बाय करके छोड़ किस तरीके से अपने पैसे को हम लगाएं गोल्ड में लगाएं या दूसरे जगह पर हम अपने पैसे का निवेश करें कि हमें बेस्ट टू बेस्ट रिटर्न जो है आने वाले वक्त में मिले
इनफैक्ट आई वुड लाइक टू ऐड टू व्हाट प्राची जस्ट आस्क्ड एंड यू आल्सो मेंशनड शशि जी इन द प्रीवियस क्वेरी दैट वैल्यू बाइंग यू टॉक अबाउट वैल्यू बाइंग दैट इज the market, the stock, the particular market, let's talk of a blue chip stock. Now, even now, when we see many of the blue chip stocks are currently available at a mouth-watering valuation. You know, earlier, let's talk of a stock X, which at one point in time would be trading at, let's say, 3,000 rupees. Now it's available at, let's say, 2200 or 2300, which would not have been kind of even possible, let's say, some 6 months back or 4 months back, before, especially before this West Asia crisis unfolded. Now, that is another factor which should be or can be taken into consideration. Your views on that?
सबसे पहले मैं सोने की बात कर लूं क्योंकि ये सोने का मुद्दा ऐसा होता है जिसमें हर किसी की दिलचस्पी होती है और हम भारतीयों के लिए तो सोना एक कहते ना कि हमारे लिए केवल एक फिजिकल और मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट नहीं है बल्कि इमोशनल इन्वेस्टमेंट भी होता
है व्यक्ति का श्रृंगार और विपत्ति का
बिल्कुल ये और लोगों को कई बार ऐसा लगता है कि सोने में हम जब करते हैं ना तो वो किसी भी समय हम उससे मुसीबत के समय में उससे हम जो हम राहत पा सकते हैं सोने में निवेश करना हो तो गहना मत खरीदिए पहला जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य याद रखना अगर आपने करना है तो या तो गोल्ड ETF में करिए या गोल्ड बिस्किट लीजिए। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड भी अवेलेबल है, लेकिन ध्यान रखिए कि अब वो टैक्सेबिलिटी उसमें ज्यादा है। तो ये तीन आपके पास विकल्प हैं अगर आप सोने में जाना चाहते हैं। अब सवाल यह है कि सोने की कीमतों को देखते हुए क्या किया जाए, तो मेरे ख्याल से वहां पर आप गोल्ड ETF में थोड़े थोड़े आप निवेश करते रहे, वहां पर आप 1 ग्राम का भी गोल्ड ले सकते हैं, क्योंकि बाजार में जाकर के फिजिकल गोल्ड लेना आसान नहीं है क्योंकि वो काफी महंगा है। 10 ग्राम आज के दिन में 160-165 तक पहुंच जाता है, क्योंकि मार्जिन वगैरह जोड़ देते हो और GST भी जोड़ देते हो। आपका जो प्रश्न था कि वैल्यू बाइंग को लेकर के, आई बिलीव दैट एवरी स्टॉक गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू इंटर, टू बाय देम, टू होल्ड देम। इट इज द टाइमिंग विच इज इंपॉर्टेंट। नाउ मेनी पीपल विल से व्हाट इज द राइट टाइम टू मेक एन इन्वेस्टमेंट। माय एडवाइस वुड बी दैट प्लीज मेक स्टॉप लॉस एंड स्टॉप गेन एज पार्ट ऑफ योर स्ट्रेटजी, दैट दिस मच प्रॉफिट आई हैव टू अर्न, देन दैट विल गिव यू सम काइंड ऑफ व्हाट यू कॉल इट एज अ रूम टू इंटर इन टू दैट पर्टिकुलर स्टॉक।
बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। मुंबई से हमारे साथ रत्नाकर जुड़ रहे हैं। रत्नाकर जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
हेलो, गुड इवनिंग मैडम। मेरा सवाल है कि आज मार्केट तो चढ़ गया था, इंक्रीज हो गया, तो इसका मतलब ये जो वॉर का सिचुएशन है अमेरिका ईरान का, उसका कितना इफेक्ट हो रहा है मार्केट पर, ये समझ में नहीं आता है। तो आगे की चाल ये इसकी मार्केट की कैसी रहेगी, एक सवाल है। और दूसरा सवाल है कि ये जो गवर्नमेंट ने अभी लेके पेटीएम बैंक का जो कैंसल किया है लाइसेंस, तो अभी पेटीएम मनी थ्रू हम जो इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक में, तो वो चालू रहना चाहिए कि उससे हम बाहर होना चाहिए? थैंक यू।
पहला जो आपका मुद्दा है शेयर बाजार को लेकर के, देखिए बहुत ही अनिश्चितता है। एक दिन खबर आती है कि बस अब बातचीत होने वाली है, फिर उसके कुछ समय के बाद खबर आती है कि नहीं जी यहां पर ये समस्या है, यहां पर वो समस्या है। तो मुझे लगता है कि इस समय शेयर बाजार में छोटे निवेशकों के लिए बहुत उचित समय नहीं है। उनके लिए अगर वो है तो वो SIP के जरिए म्यूचुअल फंड में जो है वो निरंतर बने रहें, वो ज्यादा उनके लिए बेहतर होगा। दूसरा आपका जो प्रश्न था, एक खास जो आपने बैंक का नाम लिया जिसका लाइसेंस रद्द किया गया, एक चीज स्पष्ट करना चाहता हूं, ये रिजर्व बैंक ने लाइसेंस रद्द किया है, सरकार ने नहीं किया है। और रिजर्व बैंक जब कोई किसी भी बैंक का लाइसेंस रद्द करता है तो उसमें कई सारे तथ्य देखे जाते हैं, और इसमें 2000 मतलब अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2-3 साल पहले से ही जो है उनके ऊपर काफी ज्यादा नियंत्रण कर दिए गए थे, वो कोई नए ग्राहक नहीं ले सकते थे। अगर मैं आपके प्रश्न को सही से समझ पा रहा हूं तो आपका मुद्दा ये था कि क्या उस शेयर में निवेश करना चाहिए। देखिए हम लोग शेयर विशेष की बात नहीं करते हैं। दूसरा जो आपका, जो मैं आप समझ पा रहा हूं कि क्या वॉलेट जो है उसमें हम बने रहें, देखिए वॉलेट के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह है, तो मेरा सुझाव यह है कि जो दूसरे विकल्प हैं उनमें भी अगर जाए तो अच्छा रहेगा।
बिल्कुल, दिल्ली से हमारे साथ तदेश जुड़ रहे हैं। कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, महोदय अपना सवाल पूछिए।
थैंक यू सो मच। आई वुड लाइक टू आस्क दैट सर, अभी IT स्टॉक खरीदना कैसा रहेगा क्योंकि वैल्यूएशन कम हो रहे हैं
इस समय में, खास तौर पर जब AI का इतना ज्यादा कहा जाए कि एक प्रकोप मुझे शब्द इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्यों वैसे ही तो बड़ा ही नकारात्मक शब्द है, लेकिन चूंकि AI ने तमाम IT सेक्टर्स को प्रभावित किया है, तो IT सेक्टर्स में अगर आप खरीदारी करते हैं तो छोटी छोटी खरीदारी करें। और कुछ एक ऐसे शेयर्स हैं जिनकी कीमतें काफी नीचे हैं, ब्लू चिप हैं, उनमें आप किस्तों में अगर खरीदारी करें लो वैल्यूएशन पे, वो बेहतर रहेगा।
Next caller is Tapos from Mumbai. Welcome.
I would like to ask one question. Now, which sector should I invest in the equity market?
There are two sectors specifically I would like to advise. One is, of course, the defense sector, and the second one is the pharmaceutical sector.
Right. And moving on to some other stories. India and New Zealand signed a free trade agreement, FTA, in New Delhi today, marking a new and significant chapter in the bilateral relationship between the both nations. The signing ceremony was presided over by the Union Minister for Commerce and Industry, Piyush Goyal, and New Zealand's Minister for Trade and Investment, Todd McClay. Speaking at the signing ceremony, Mr. Goyal said that the FTA has been concluded in a record 9 months. He said that the pace reflects the depth of trust and shared ambitions. Mr. Goyal added that it is the seventh FTA that has been signed in the last 3.5 years, with two more to be signed in the next few months with the European Union and the United States.
The free trade agreement is very comprehensive, very forward-looking. While it opens the doors for goods and services in a massive way, it also has an investment commitment which will encourage businesses to leverage the strengths and scale that India offers. It will also encourage Indian businesses to look at New Zealand market, both for access in goods and services and potential investment. We are looking at partnerships also on agricultural field.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर का स्वागत किया और इसे दोनों देशों की साझेदारी में एक ऐतिहासिक क्षण बताया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के साझा विकास में अभूतपूर्व गति प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि इससे विकास के नए रास्ते खुलेंगे, नवीनतम अवसर पैदा होंगे और विभिन्न क्षेत्रों में आपसी तालमेल बढ़ेगा। प्रधानमंत्री ने बताया कि इस समझौते से किसानों, युवाओं, महिलाओं, लघु और मध्यम उद्यमों, कारीगरों, स्टार्टअप्स, छात्रों और नवप्रवर्तकों को व्यापक लाभ होगा। श्री मोदी ने यह भी बताया कि न्यूजीलैंड द्वारा 20 अरब अमरीकी डॉलर की निवेश की प्रतिबद्धता कृषि, विनिर्माण, नवाचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करेगी। इससे दोनों देशों के लिए अधिक समृद्ध और गतिशील भविष्य का मार्ग प्रशस्त होगा। शिशिर, हम लौटेंगे इस खबर पर आपसे विवेचना के लिए, लेकिन उससे पहले दिल्ली से हमारे साथ नीलम जुड़ रही हैं। नीलम जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
शायद उनसे संपर्क हमारा टूट गया है। और इसी बीच हसन फ्रॉम दिल्ली, हसन वेलकम।
हेलो सर।
हेलो, यस प्लीज गो ऑन।
सर मुझे डीमैट अकाउंट के बारे में क्वेश्चन करना था। मुझे डीमैट अकाउंट खोलना है अपना
जी,
तो उसके प्रोसेस क्या होते हैं और उसके लिए क्या सैलरी अकाउंट होनी चाहिए या
नहीं? हसन, ऐसी कोई आपको जरूरत नहीं है। आप अपना जिस बैंक में आपका अकाउंट है वहां पे जाके आप अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। केवाईसी पूरी करनी होगी, पैन आपको देना होगा और जैसा बैंक अकाउंट खुलता है वैसे ही वो खुल जाएगा, आपको दिक्कत नहीं है।
एंड मूविंग ऑन टू क्रूड, द ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस रोज टुडे अमिड लिंगरिंग जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज। ब्रेंट क्रूड वाज ट्रेडिंग ओवर 1% अप एंड $106.46 per barrel, while the West Texas Intermediate crude was trading 0.8% up at $95.17 per barrel when reports last came in. And on to bullion. In the Indian bullion market, 24-carat gold was trading 0.3% down at 1,52,610 rupees per 10 grams, while silver was trading 0.7% down at 2,44,300 rupees पर किलोग्राम में शॉर्ट वाइल अगर।
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में जून अनुबंध वाला सोना 0.3% की गिरावट के साथ 1,52,229 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था और मई अनुबंध वाली चांदी 0.6% गिरकर 2,43,135 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। शिशिर जी, एफटीए पर आपकी एक संक्षिप्त टिप्पणी चाहूंगी क्योंकि हम समय की बाध्यता में हैं।
इस समय हमें एक वैकल्पिक बाजार की जरूरत है और चाहे वो न्यूजीलैंड की बात हो और अब ओमान के साथ होना है, फिर उसके बाद ईयू के साथ, फिर आपका यूएस के साथ, तो हमारे लिए बाजार जैसे जैसे बढ़ेंगे हमारे लिए उतनी ही बेहतरी होगी।
राइट, एंड विद दैट वी आर कमिंग।
शिशिर कार्यक्रम में आने और हमारे श्रोताओं जो हमसे जुड़े हैं उनका उनके सवालों के जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे और निशित की तरफ से भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू सो वेरी मच शिशिर जी। एंड बिफोर वी क्लोज, हियर इज अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस वंस अगेन। द बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस रिबाउंड, सेंसेक्स गेन्स ओवर 600 पॉइंट्स, निफ्टी closes at nearly 24,100. India and New Zealand sign landmark free trade agreement. Prime Minister Narendra Modi says it will open new avenues for growth, create opportunities and deepen synergy across sectors. And the global crude oil prices rise. And that's all we have in this edition of Market Mantra from the entire team here. It's goodbye.